أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. یہ یہاں ایک کتاب چھپی ہے جو جس کا ٹاپک ہے سے دقیقے در قیامت، یعنی قیامت کے 3 منٹ. اس کتاب میں جو مطالب بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک سپاہی، ایرانی سپاہی جو جنگ میں مجروح ہو جاتا ہے اور آپریشن کے دوران اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور 3 منٹ تک اس کی روح اس کے بدن سے جدا ہو جاتی ہے اور اس کا دل، اس کا دماغ کچھ بھی کام نہیں کر رہا ہوتا، اور ڈاکٹرز کی بہت کوشش کرنے کے بعد پھر وہ واپس زندہ ہو جاتا ہے. اور پھر اس 3 منٹ میں اس شخص پہ کیا کیا گزری ہے اس کا بیان ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ ان مطالب کو اب تک پہنچاؤں اور آپ ان مطالب کو سنیں اور انشاءاللہ اس سے درس حاصل کریں. یہ ایک ایسے شخص کا قصہ ہے جو خود اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ میں بہت ہی دیندار فیملی سے تھا، میں مسجد مقرر جاتا تھا، ریگولرلی جاتا تھا، میری ہر نماز مسجد میں ہوتی تھی، صبح کی نماز، ظہر کی نماز، مغرب عشاء کی نماز، ہر نماز مسجد میں ہوتی تھی، اور میں بہت زیادہ مذہبی خاندان سے تھا. حتیٰ کہ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ میرا سارا دن اور ساری رات جو ہے مسجد میں اور مسجد کی خدمت کرنے میں گزر جاتی تھی. اور میں کئی سال تک جو ہے جنگ میں بھی شرکت کیا ہوں ایران کی طرف سے، اور میں کافی دین کے لیے مقید تھا اور میں بہت ہی دیندار شخص تھا، یہاں تک کہ میری نماز شب بھی اکثر وقت قضا نہیں ہوتی تھی، تقریباً نماز شب میری مقرر ہوتی تھی. اور بہت خدا سے التماس اور دعا کرنے کے بعد اور بہت کریا کرنے کے بعد مجھے یہ توفیق حاصل ہوئی کہ میں جو ہے جنگ میں شرکت کر سکوں، تاکہ جو ہے میں دین کی حفاظت کر سکوں. اور بہت دل میں شہادت کی خواہش تھی لیکن وہ حاصل نہیں ہو سکی. لیکن جیسے ہی جنگ ختم ہو گئی، وہ 8 سال کی جنگ جو ایران اور صدام کے بیچ ہوئی تھی، جب وہ ختم ہو گئی تو وہ کہتا ہے کہ میں پوری اپنی زندگی کی کوشش اسی چیز میں لگائے رکھا تھا کہ میں وہ معنویت اور وہ نورانیت کو حاصل کروں اور خود کی نفس کو پاک کروں اور اسی کام میں لگا رہوں. کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر شہادت کا راستہ اور شہادت مجھے حاصل کرنی ہے تو مجھے پہلے جہاد اصغر، یعنی شہید ہونے سے پہلے جہاد اکبر میں کامیاب ہونا ہے، جو کہ نفس کی پاکیزگی ہے، اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے میں بڑی کوششیں کرتا تھا، تاکہ اگر میں جہاد اکبر میں کامیاب ہو جاؤں تو پھر میں جہاد اصغر میں بھی بہت آسانی سے کامیاب ہو جاؤں گا. میں اپنی زندگی اتنی احتیاط سے بتاتا تھا کہ اگر میں گھر سے مسجد بھی جا رہا ہوتا تو میں اپنا سر نیچے رکھ کر جاتا، تاکہ میری نگاہ کوئی نامحرم شخص پہ نہ پڑ جائے اور کسی طرح کے گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں. اور پھر ایسا ہوا کہ ایک شب میں تنہا تھا اور خدا کی بارگاہ میں نماز پڑھ کر بہت رو رو کر، گریا کر کے میں نے دعا کیا کہ خدایا مجھے حفظ کرنا، میں ابھی صرف 17 سال کا ہوں اور مجھے بہت اس بات کا خوف ہے کہ کہیں اس زمانے تک جب تک کہ میری موت کا وقت نہ آ جائے، ایسا نہ ہو کہ میں اس دنیا کی چکا چون میں کھو جاؤں، میں اس دنیا کی خواہشات میں مبتلا ہو جاؤں اور میں حق کو بھول جاؤں اور میں اس دنیا کے خواہشات کے پیچھے بھاگنے لگوں. تو خدایا مجھے اس مشکل سے بچانا اور مجھے پاک و پاکیزہ رکھنا، تاکہ میں دنیا کی چکا چون میں کھو نہ جاؤں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس دنیا کی چکا چون میں کھو جاؤں اور میری جو نفس ہے، میرا جو باطن ہے، وہ میں آلودہ کر دوں اور ناپاک کر دوں اور خواہشات میں ڈبو دوں. تو میری مدد کرنا کہ میں ایسے کاموں سے دور رہوں. اور اسی بات کا ڈر اس شخص کو اتنا ستاتا تھا کہ یہ کئی بار بہت شدت سے رو کر، گریا کر کر جناب اسرائیل، جو کہ ملک الموت ہے، ان سے دعا کرتا تھا کہ اے ملک الموت، मेरी मौत को देरी ना करे, जल्द आ जाए और मेरी रूह को कब्ज़ कर ले। और खुदा की बारगाह में भी यही दुआ करते थे कि मुझे मौत जल्द से जल्द दे दे, ताकि इस दुनिया में ज़्यादा मुद्दत रहने की वजह से कहीं मैं गुनाहों में मुब्तला ना हो जाऊँ। फिर चंद रोज़ बाद कुछ ऐसा हुआ कि कुछ अफराद को मस्जिद की तरफ से प्रोग्राम बनाया गया कि कुछ अफराद जो पहले मशहद नहीं गए हैं उनको मशहद ले जाया जाए। तो ये शख्स भी क्योंकि मस्जिद के मेंबर थे तो इन्होंने भी बहुत काम काज में बिज़ी हो गए ताकि वसाइल फराहम किए जाए, ताकि ये इन अफराद को मशहद ले जाया जाए। इनकी टिकट बुक कराना, इनके लिए बस अरेंज करना, इनका खाना लेकर जाना, ये सारी चीज़ों में ये बिज़ी हो जाते हैं। और कहते हैं कि फिर भी मेरे दिल में यही ख्याल था कि मैं जो है जब भी काम करके थक जाता या मुझे थोड़ा बहुत वक्त मिल जाता तो मैं फिर से जनाब इज़राइल से दुआ करता कि ए मलिकुल मौत, आप मुझे इस ज़िंदगी से जल्द छुटकारा दें और मेरी मौत को नज़दीक कर दें। फिर वो कहते हैं कि मैं क्योंकि बहुत मेरी उम्र कम थी, 17-18 साल थी, तो मैं जानता नहीं था कि अहलुल बैत ने इस मामले में हमसे क्या नसीहत की है, कि जो कि बाद में उन्हें पता चला कि इस तरह की दुआ मांगना सही नहीं है। तो यहाँ इतराफ़ करते हैं कि क्योंकि मैं नहीं जानता था इसलिए ऐसी दुआ करता था, लेकिन जब बाद में पता चला तो मुझे इस बात का अफसोस हुआ कि मैं इस तरह की दुआ मांगता था। फिर वो कहते हैं कि एक दिन मैं बहुत काम करके थक गया था, अगले दिन कारवान को लेकर निकलना था, पंचशंबे का दिन था और आज का दिन चारशंबे वेंसडे का दिन था, तो बहुत काम करके थक गया था, तो मैं घर आकर सो गया और आधी रात को उठा, फिर मैं नमाज़े शब पढ़ा और सो गया। और कुछ ही देर बाद मैंने ख्वाब में देखा कि एक बहुत ही ज़ीबा और बहुत ही हैंडसम दिखने वाला शख्स मेरे नज़दीक आता है और कहता है कि क्यों मुझे इतना याद करते हो, क्यों मुझे इतना बुलाते हो, मुझसे क्या काम है तुम्हें? तो ये शख्स कहता है कि वो शख्स इतना इतना खूबसूरत और इतना ज़ीबा था कि एक तो उसकी ज़ीबाई और ख़ूबसूरती की हैबत की वजह से मैं अपनी जगह से हिल नहीं पाया, लेकिन उसी हैबत की वजह से मैं उनके सामने अदब से खड़ा हो गया और उन्हें सलाम करने लगा। ये वही ख्वाब की हालत में वो उस शख्स को सलाम करते हैं। तो फिर वो और समझ जाते हैं कि जनाब इसराइल है। तो जनाब इसराइल उससे कहते हैं कि अपनी मौत की दुआ इतनी मत मांगो, अभी तुम्हारा वक्त नहीं हुआ है, मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। और तो फिर ये उनके कदमों पे गिर कर बहुत गिड़गिड़ा कर रोने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं, अभी आप आए हैं तो मुझे लेकर ही जाएँ और मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, मुझे डर लगता है कि मैं कहीं गुनाह में मुब्तला ना हो जाऊँ और मेरी नफ्स आलूदा ना हो जाए। तो जनाब इसराइल उसकी तरफ़ इशारा करते हैं और कहते हैं कि अभी तुम्हारा वक्त नहीं हुआ है, लौट जाओ अपनी जगह पर। और वो उस एक इशारे की वजह से वो अपनी जगह पर वापस पहुंच जाता है, लेकिन वही वापस जाते जाते वो बहुत ज़ोर से ज़मीन पर गिर जाता है और उस वक्त उसके दाएं हाथ पर चोट लग जाती है और बहुत दर्द होने लगता है। उसी वक्त वो अपनी घड़ी में वक्त देखता है तो ये जोहर का टाइम, जोहर के 12 बज रहे होते हैं और बहुत शिद्दत से उसके लेफ़्ट हैंड में, बल्कि पूरी लेफ़्ट साइड ऑफ़ द बॉडी में दर्द होने लगता है और उस दर्द से वो बेदार हो जाता है। और जब आँख खुलती है तो तब भी उसके बॉडी में बहुत दर्द हो रहा होता है। फिर अगले दिन वो अपने कामों में बिज़ी हो जाता है और फिर जाने की तैयारी सब हो जाती है। तब अचानक उन्हें पता चलता है कि ये लोग जो सिपा में थे, जो इनकी टीम सारे अफराद को मशहद ले जाने वाले थे, इनको अभी तक सिपा की तरफ से परमिशन नहीं मिला है, क्लियरेंस नहीं मिला है कि ये छुट्टी पे जा सकते हैं और इनको इन अफराद को मशहद ले जा सकते हैं। तो ये फौरी अपनी मोटर बाइक लेकर वो जो है परमिशन लेटर लेने के लिए अपने ऑफिस की तरफ जाते हैं, बड़ी तेज़ी से जाकर लौट रहे होते हैं और लौटते समय उनका बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत ही शदीद एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से ये अपनी बाइक से उड़कर चंद मीटर दूर जाकर गिरते हैं। तो कार से जिससे इनका एक्सीडेंट होता है वो बेचारा, उसे तो लगता है कि इनकी मौत हो गई है, इंतकाल हो गया, वो दौड़े दौड़े इनके पास आता है ये देखने के लिए कि ये ज़िंदा भी है या मर गए, लेकिन ये अपनी जगह से उठ जाते हैं। तो बड़ा ताज्जुब में आ जाता है वो ड्राइवर, कहता है कि तुम बच गए, तुम्हें कुछ चोट नहीं लगी, तुम्हें कहीं खून नहीं आया, कुछ हड्डी वड्डी तो नहीं टूटी? लेकिन वो अपनी जगह से उठते हैं, कहते नहीं मैं ठीक हूँ। और फिर वो टाइम देखते तो वही बिल्कुल बराबर 12 बज रहे होते, और तभी उन्हें वो याद आता है कि कल शब उन्होंने यही ख्वाब में देखा था कि जनाबे इसराइल आए थे और इसी 12 बजे के वक्त इसे लौटा दिया और कहा कि अभी तुम्हारा वक्त नहीं हुआ है, यानी यही इशारा था कि अभी तुम्हारा वक्त नहीं हुआ है, अगरचे तुम मुश्किलात में या किसी सख्त चीज़ में मुब्तला हो जाओगे, लेकिन तुम्हारा वक्त नहीं हुआ है तो तुम्हें नहीं ले जाया जाएगा। और इस बात की तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं कि अभी उनका वक्त नहीं हुआ है, और जब तक वक्त नहीं होगा उन्हें ले जाया नहीं जाएगा। तो फिर वो सोचते हैं कि बाकी की ज़िंदगी भी इसी हालत में गुजारनी होगी, जहाँ पर वो कोशिश करेंगे, अपनी नफ्स पे काम करेंगे और अपनी रूह को पाक रखेंगे। और फिर ये आगे बढ़ जाते हैं इस मशहद की ट्रिप की तरफ, वो अफराद को लेकर मशहद की तरफ निकल जाते हैं। बयान करते हैं कि तकरीबन 2 हफ्ते तक ये जो एक्सीडेंट की वजह से दर्द हुआ है लेफ़्ट साइड बॉडी में, वो 2 हफ्ते तक चलता रहा और काफ़ी सख्त उनके लिए वो वक्त गुजरा है, क्योंकि बहुत शदीद उन्हें ज़ख्म लगा था, चोट आई थी। फिर वो कहते हैं कि एक बात मैं यहाँ बताता चलूँ कि मैं जो जिस तरह का शख्स था, जिस तरह का पर्सनालिटी थी मेरी, वो ये थी कि लोग मुझे इस नाम से जानते थे कि ये बहुत मजाकिया शख्स है, बहुत मजाक करता है, लेकिन अपने काम के लिए बहुत जिद्दियत से काम करता है। अगर इसे कोई काम सौंपा जाए तो वो पूरी तरह अंजाम देता है, उसे पूरा कमाल तक पहुंचाता है, पूरा कंप्लीट करता है, लेकिन बहुत ही मजाकिया शख्स है, अपने काम में मजाक करता है। और बहुत मशहूर थे कि अगर ये जहाँ भी जाएँ तो वहाँ पर लोग कभी इनके साथ बैठे बैठे थकते नहीं थे, घंटों घंटों बात चलती थी और हंसी मजाक चलता था। और अगर ये लोग कहीं इस पे अपनी तरफ से जो सिपा की तरफ से ट्रेनिंग कैंप वगैरह में ले जाए जाते, तो इनका टेंट जो होता वहाँ से रात रात भर तक हंसी मजाक की आवाज़ें आती थी। तो ये बहुत ही मारूफ थे कि ये काफ़ी मजाकिया शख्सियत थे और लोग इनके साथ रहकर यही हंसी मजाक करते थे। और फिर ये इस पहले बख्श के आखिरी हिस्से में कहते हैं कि फिर जो है 1390 जो ईरानी कैलेंडर है, उस साल में जो है इनको एक मामूरियत दी गई एक टीम के साथ, कि ये जाएं और एक हिस्से को जहाँ पर जो है अमरीकी सोल्जर्स और इराकी सोल्जर्स की तरफ से कुछ इरा नहीं अमरीकी सोल्जर्स लिखा हुआ है, अमरीकी सोल्जर्स की तरफ से कुछ हमला किया गया है अफराद पर, तो वहाँ जाकर वो अमरीकी सोल्जर्स को भगाएं और उस मंतक़े को आज़ाद करें। तो फिर वो अपनी टीम के साथ उस मंतक़े को आज़ाद करने के लिए निकल जाते हैं, और इस अमलियात में, ये ऑपरेशन जो उनको अंजाम देना था, इसमें वो घायल और मजरूह हो जाते हैं। इंशाल्लाह मैं आगे की बहस, आगे के मतलब जो है, जो नेक्स्ट चैप्टर है इसका, वो मैं नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में आपको भेजूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप ये सुने ताकि आपको समझ आए कि ये बात जो है, ये कोई दुनिया में जो हम हर काम करते हैं, जहाँ खुदावंद मुताल ने हमें कुरान की आयतों से बार बार आगाह किया है और कहा है कि तुम अगर ज़र्रे भर की भी नेकी करोगे तो इसका सवाब तुम्हें मिलेगा, और ज़र्रे भर की भी बुराई करोगे या गुनाह करोगे तो इसका अजाब भी और इसका हिसाब किताब भी किया जाएगा। तो ये बिल्कुल आप इसको जितना सीरियसली ले सकते हैं लें, क्योंकि इस क़िस्से के बाद आपको समझ में आएगा कि वहाँ जब हम जाते हैं तो वहाँ का मामला इतना आसान और इतना सादा नहीं है। इंशाल्लाह मैं और दूसरी बातें दूसरे लेक्चर्स के साथ बताऊँगा। फ़ेलन आप ये लेक्चर सुने, ये दूसरी वॉइस रिकॉर्डिंग है इस किताब की, 3 मिनट क़यामत के, जिसमें वो जनाब अपनी दास्तान को बताते हुए बयान करते हैं कि जब उनकी ट्रेनिंग ख़त्म हुई तो फिर मौका आया कि वो अमली मैदान में उतरें, तो उन्हें एक रेस्क्यू ऑपरेशन अपॉइंट किया गया और वो रेस्क्यू ऑपरेशन में अपने दोस्तों के साथ चले गए, और बड़ी कामयाबी के साथ वो रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाए। इसमें बस उनके कुछ दोस्त शहीद हो गए। वो कहते हैं कि मेरे दिल में भी बहुत आरज़ू थी शहादत की, बहुत शौक़ था मेरे दिल में, लेकिन जितनी शिद्दत से मेरे दिल में शौक़ शहादत का था उन जवानी के दिनों में, जब मैं 17, 18, 20 साल का था, अब उतनी शिद्दत से वो शौक़ नहीं रह पाया। तो बार बार मेरे दिल में ख़्याल आता था कि मैं कहाँ और शहादत कहाँ। तो इस ख़्याल से वो मैदान जंग में गए और वो कहते हैं कि मैदान जंग की हालत कुछ ऐसी थी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्दोगुबार था और बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी, जिसकी वजह से उनके आँखों में इन्फेक्शन हो गया था और आँखों में बहुत दर्द हो रहा था। तो वो वहाँ पर जो मुकीम डॉक्टर होते हैं, रेसिडेंशियल डॉक्टर जो कैंप्स में होते हैं, उनके पास गए। उन्होंने उसको चेक किया, आइस को, और फिर कहा कि ठीक है, कोई सीरियस बात नहीं है, बस ये खतरे आँख में डाल दो और 1 घंटे में ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन वो खतरों का इस्तेमाल करने के बाद 1 घंटे क्या चंद हफ्ते गुजर गए और उनकी आँखों की हालत कुछ बेहतर नहीं हुई। मखसूसन उनकी लेफ़्ट आई जो थी वो बहुत दर्द कर रही थी। तो कई डॉक्टर्स के पास गए और इसी दर्द की हालत में उनकी आँख उन्हें बहुत सताती रही, और वो मुख्तलिफ ऑपरेशंस में शिरकत भी करते रहे, अमलियात अंजाम देते रहे, रेस्क्यू ऑपरेशंस, डिफेंस ऑपरेशंस, ये सब करते रहे। और ऐसे ही वक्त गुजरते गुजरते तकरीबन 3 साल गुजर गए, लेकिन उनकी आँखों की हालत कुछ बेहतर नहीं हुई। वो कहते हैं कि मैं 100 डॉक्टर्स के पास गया और हज़ारों गोलियाँ खाई, हज़ारों दवाओं का इस्तेमाल किया, लेकिन मेरी आँखों की हालत कुछ बेहतर नहीं हुई। फिर एक दिन ये हुआ कि जब वो नींद में से उठे सुबह सुबह, तो उन्हें लगा कि उनकी आँख पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है और जैसे कि बस उनकी आँख बाहर निकल कर गिरने वाली है। तो वो काफ़ी घबरा गए, आईने में जाकर देखते हैं तो वाकई उनकी लेफ़्ट आई जो है वो आई सॉकेट से बाहर आने लगी थी, और ज़ाहिरन उनकी आँख के पीछे कोई ट्यूमर हो गया था वो इन्फेक्शन की वजह से, और वो ट्यूमर इतना ग्रो होना स्टार्ट हो गया था कि वो उनकी लेफ़्ट आई को आँख के बाहर पुश कर रहा था। और वो फिर फौरन हॉस्पिटल भागते हैं और हॉस्पिटल जाकर वो जो है उनकी आँख का कंसल्टेशन करवाते हैं, एक्सरेज निकालते हैं, तो पता चलता है कि उनके आँख के पीछे एक बहुत बड़ा ट्यूमर ग्रो हो रहा है और वो ट्यूमर की वजह से उनकी आँख पे बहुत प्रेशर बिल्ड हो रहा है। तो फिर वो डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि बस 1 या 2 दिन में ऑपरेशन करके उसे निकाल दे, क्योंकि दर्द बहुत शदीद है। तो डॉक्टर्स ने फिर एक्सरेज निकाले और सीटी स्कैन किया, और फिर जब बर्रसी की इवेल्यूएट किया तो उन्हें पता चला कि ये जो ट्यूमर ग्रो हो रहा है उनकी आँख के पीछे, वो 2 तरह से कनेक्टेड है। एक उनकी आँख से कनेक्टेड है और दूसरा उनके ब्रेन से भी कनेक्ट हो गया है, और अगर ये ऑपरेशन करने की कोशिश करेंगे तो या फिर बीमार की यानी इनकी आँख जा सकती है, या फिर इनके ब्रेन को डैमेज हो सकता है जिसकी वजह से इनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तो उन्होंने इवेल्यूएट करके डॉक्टर्स ने कहा कि ये ऑपरेशन में जो है वो 60% एंड हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंजर है एंड ज़्यादा रिस्क है, तो वो ऑपरेशन करने से इनकार करते हैं। लेकिन ये बहुत रिक्वेस्ट करते हैं और इल्तमास करते हैं, और हत्ता जो पेपर्स पे साइन करने की ज़रूरत थी वो सारे साइन करके वो ज़िम्मेदारी अपनी गर्दन पे लेने के लिए तैयार होते हैं। तो फिर डॉक्टर्स मान जाते हैं कि वो इनका ऑपरेशन करेंगे। तो एक आई स्पेशलिस्ट और एक न्यूरोसर्जन, ये सब ऑपरेशन थिएटर में हाजिर हो जाते हैं और इनका आई ऑपरेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं। और ऑपरेशन थिएटर में आने से पहले दोबारा इनसे कहा जाता है कि देखिए, ये ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो अगर आप चाहें तो आप कह सकते हैं यानी चूज़ कर सकते हैं कि आप ऑपरेशन अंजाम ना दें, लेकिन क्योंकि आप इतना इसरार कर रहे हैं तो इसलिए हम ये ऑपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, आपके एम्फेसिस पर और इंसिस्टेंस पे हम ये ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं, वरना ऐसे ऑपरेशन को हम अंजाम नहीं देते, क्योंकि इसमें हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ साइट यानी आंखें जाने का डर, या दिमाग को नुकसान पहुंचने का डर, या हत्ता मौत का चांस है। तो ये पॉसिबल है कि आप ऑपरेशन थिएटर में ही आपकी जान चली जाए, क्योंकि ये ट्यूमर जो है वो आपके ब्रेन से कनेक्टेड है। तो वो कहते हैं कि नहीं, आप ऑपरेशन करें और इसको कंटिन्यू करें। और फिर वो जो है तमाम अपने रिश्तेदारों से हलालियत तलब करते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं, अपनी बीवी को खुदाफिजी करते हैं। उनकी बीवी प्रेग्नेंट है, आई थिंक 3 या 4 महीने वो प्रेग्नेंट है। तो वो अपनी बीवी को खुदाफिजी करते हैं, तमाम रिश्तेदारों को फ़ोन करके उन्हें खुदाफिजी करते हैं, हलालियत तलब करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, और फिर बीमारिस्तान की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे वो ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, उन्हें एक एहसास होता है कि जैसे कि बस ये इनके आखिरी लम्हे हैं और ये ऑपरेशन थिएटर से वापस नहीं जाएंगे। लेकिन डॉक्टर्स जो थे वो बहुत ही केयरफुली सारी तैयारी के साथ अपना काम शुरू करते हैं, और वही ऑपरेशन के राइट एट द बिगनिंग इन्हें बेहोश किया जाता है, और फिर ये बेहोश हो जाते हैं और फिर ऑपरेशन का काम शुरू हो जाता है। और ऑपरेशन तकरीबन 6 घंटे चलने वाला था, तो डॉक्टर्स ने पहले ही बता दिया था इनसे कि ऑपरेशन 6 घंटे चलेगा, लेकिन इत्तेफाकन क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा थे तो ऑपरेशन बहुत देर तक चला, 6 घंटे से भी ज़्यादा। और ये डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे थे कि इस ट्यूमर को निकालें, लेकिन क्योंकि ट्यूमर ब्रेन से कनेक्टेड था तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए। तो फिर वो बहुत ज़्यादा कोशिश और ज़्यादा दिक्कत से और प्रिसिशन से डॉक्टर्स काम करने लगे, बहुत ज़्यादा एक इमरजेंसी वाली हालत हो गई थी ऑपरेशन थिएटर में। और फिर जैसे जैसे काम आगे बढ़ते गया और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते गए, क्योंकि ज़ाहिरन कोई नर्व्स जो है वो स्पेसिफिक नर्व्स उस ट्यूमर से कनेक्टेड थे, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन और बहुत ज़्यादा इमरजेंसी वाली हालत हो गई थी, सारे डॉक्टर्स काफ़ी परेशान थे। फिर अचानक ये हुआ कि तकरीबन ऑपरेशन के लास्ट फ्यू मिनट्स या लास्ट 15-20 मिनट्स थे, तो ये कहते कि अचानक ये हुआ कि ऐसे लगा जैसे कि बस ये कामयाब हो गए, इन्होंने वो ट्यूमर निकाल दिया है। और बहुत ही मुझे आराम फील होने लगा, जैसे कि बस पूरी बॉडी मेरी आराम हो गई और वो दर्द जो मुझे इतने सालों से सता रहा था वो ख़त्म हो गया और बिल्कुल बहुत ही हल्का मुझे महसूस होने लगा। जब ये एहसास होने लगा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है और इन्होंने ट्यूमर निकाल दिया है, तो बहुत आराम महसूस हुआ और मैं खुदा का बहुत शुक्र अदा करने लगा कि खुदा है तेरा बहुत शुक्र कि ये इतने सालों से जो आँख का दर्द और सर का दर्द था, अब इससे मुझे निजात मिल गई और राहत मिल गई, तेरा बहुत बहुत शुक्र। और दरहाली के यानी इतने सारे इक्विपमेंट्स मेरे फेस और बॉडी पे कनेक्टेड थे, लेकिन फिर भी इतनी मुझे राहती और कंफर्ट महसूस हो रहा था ये दर्द ख़त्म होने का, कि मैं उस बिस्तर पर उठकर बैठ गया और फिर मैं बस बैठकर बस आगे देख ही रहा था। बस ऐसा लगा कि एक लहज़े में मेरे तवल्लुद यानी मेरी बर्थ से लेके अब तक की पूरी ज़िंदगी मेरे आँखों के सामने से पूरी डिटेल के साथ एक लहज़े में गुजर गई। और जैसे मैंने अपनी नज़र दौड़ाई मेरे सीधे हाथ की तरफ, तो मैंने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत और ज़ीबा नौजवान खड़ा हुआ है, मेरी तरफ़ देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। उसको देखकर मैं काफ़ी मबहूत हो गया, उसकी हैबत मेरे अंदर समा गई और मेरे दिल में ये बात बार बार आने लगी कि कितना ज़ीबा है ये इंसान। दिल चाह रहा था कि उठूं और उसे गले लगा लूं। और फिर जब मैंने अपने दाएं तरफ देखा तो देखा कि यहाँ मेरे दादा, मेरे चचा जान और दूसरे अफराद यहाँ खड़े हुए थे। तब मुझे याद आया कि मेरे चचा जान को गुजरे हुए तो चंद साल हुए, फिर ये यहाँ कैसे मौजूद हो गए। फिर वापस मैंने उस नौजवान को देखा जो बहुत ज़ीबा था, और मैंने सोचने लगा कि ये पहले मैंने इस शख्स को कहीं देखा है, इससे मेरी कहीं मुलाकात हुई है, ये कौन शख्स है जो मुझे इतना आशना लग रहा है। यही सोच रहे थे कि उन्हें अपने चाचा का बेटा भी नज़र आने लगा जो जंग के दौरान शहीद हो गया था। और उस नौजवान को देखते हुए मैं जब ये सोच रहा था, तब मुझे याद आया कि तकरीबन 25 साल पहले मैंने इसी शख्स को इसी ज़ीबाई के साथ देखा था। और उन्हें याद आता है कि ये जनाबे इज़राइल हैं, तो अदब से उन्हें सलाम करते हैं और कहते हैं कि आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ, और जनाबे इज़राइल भी उन्हें जवाब देते हैं और एक बड़ी बड़ी प्यारी मीठी मुस्कुराहट देते हुए इस शख्स से कहते हैं चलना है। इंशाल्लाह आगे का मतलब जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में शुरू होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। ये तीसरा पार्ट है इस किताब का, 3 मिनट कयामत के। जनाबे इसराइल इन शख्स की तरफ बड़ी मीठी निगाहों से देखते हैं और एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ इनकी तरफ मुतवज्जे होकर कहते हैं चलना है। तो ये जनाब बहुत ताज्जुब में आकर कहते हैं कहाँ, और फिर एक नज़र अपने अतराफ़ दौड़ाते हैं तो देखते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में जो डॉक्टर्स इन पर ऑपरेशन कर रहे थे वो अपना ऑपरेशन करना बंद कर देते हैं, हाथ उठा लेते हैं। और इनमें से जो सबसे बड़ा डॉक्टर था वो अपनी टीम की तरफ देखता है और कहता है कि अब मरीज़ हमारे बीच नहीं रहा, हमने बहुत कोशिश की, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत ज़हमत उठाई, बहुत कोशिश की, लेकिन मरीज़ की हालत ऐसी थी और उसका बदन ऐसा था कि वो इसे तहम्मुल नहीं कर पाया, इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। इस पर और कोशिश करना कोई फ़ायदा नहीं रखता। तो एक दूसरे डॉक्टर ने कहा कि क्या शॉक मशीन लेकर आए ताकि इन्हें शॉक देकर ज़िंदा किया जाए। और तब ये जनाब अपने अतराफ़ देखते हैं कि जितने भी मशीन्स इनको कनेक्टेड थे वो सारे जो है ब्लैंक हो गए, सब में एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, यानी ये कि ना इनके दिल में कोई हरकत है ना इनके दिमाग में कोई हरकत चल रही है, सब फ्लैट लाइंस हो गए थे। फिर ये जनाब कहते हैं कि ये जो माजरा मैं ऑपरेशन थिएटर में देख रहा था बहुत ही अजीब माजरा था। कहते हैं कि मैं देख रहा था कि मेरा जो मेन डॉक्टर है वो मेरी तरफ़ पीठ कर कर खड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी मैं उसकी सूरत देख पा रहा था, मैं देख पा रहा था कि लोगों के जहन में क्या चल रहा है, बल्कि न सिर्फ मैं उन सब की बातें बल्कि मैं उनका जहन पढ़ पा रहा था कि इनके जहन में क्या चल रहा है। फिर जब मैंने दरवाजे की तरफ़ देखा तो मैं दरवाजे के उस पार देख पा रहा था, दीवार के उस पार मैं देख रहा था कि मेरा भाई बैठा हुआ है, हाथ में तस्बीह लेकर तस्बीह कर रहा है, और मुझे पूरी तरह याद है कि वो कौन सा जिक्र कह रहा है। बल्कि इससे अजीब मेरे लिए ये था कि उसके जहन में जो बातें चल रही थी वो भी मुझे सुनाई दे रही थी, कि वो ये सोच रहा था कि खुदाया अगर मेरे भाई को कुछ हो जाए तो हम क्या करेंगे, इसके दो बच्चे हैं और तीसरा बच्चा ऑलरेडी रास्ते में है, यानी कि इसकी जौजा जो है वो प्रेग्नेंट है, अगर इसे कुछ हो जाता है तो फिर इन बच्चों का क्या होगा। बड़ी अजीब बात थी कि इसे मेरी भी फिक्र थी और मेरे बच्चों की भी फिक्र थी। जब नज़र मैंने कुछ इस तरफ़ दौड़ाई तो दीवार के इस तरफ सारे वार्ड्स थे और वार्ड्स में बेड्स पर सारे पेशेंट्स लेटे हुए थे, और इनमें से कई लोग अपने अपने काम में बिज़ी थे, इनके फ़िक्रों में क्या चल रहा था ये सब मैं देख पा रहा था। इनमें से एक पेशेंट ये था जो खुदा से दुआ कर रहा था, मेरे लिए दुआ कर रहा था, और मैं इस पेशेंट को जानता था क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में आने से पहले मैंने इसको खुदा हाफिज़ी की थी और इससे कहा था कि शायद मैं वापस ना आऊँ। और ये पेशेंट एक जानबाज था जो जंग में मजरूह हो गया था, घायल हो गया था, और इसका इलाज चल रहा था, और ये खुदा से खुदा की बारगाह में बहुत खालिसाने दुआ कर रहा था, और उसकी दुआ ये थी कि खुदाया मुझे ले जा और उस शख्स को बख्श दे, उसे ज़िंदा रख, उसे शफा दे दे, उसके बीवी और बच्चे हैं और मेरे बीवी बच्चे नहीं हैं, तो उसके बदले मुझे ले जा और उसे यहाँ छोड़ दे। ऐसी ही हालत में मुझे एहसास हुआ कि मैं सबका बातिन देख पा रहा था, यानी मैं उनकी हकीकत देख पा रहा था, मैं उनकी नीयत को देख पा रहा था, मैं उनके आमाल देख पा रहा था, मैं उनका वजूद जो हकीकी हालत में है उसे देख पा रहा था, और इसी चीज़ों में मैं मशगूल था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। तभी फिर उस खुश अख्लाक और बहुत ज़ीबा नौजवान जो मेरे पास खड़ा हुआ था उसने वापस से मुझसे कहा, चलना है। अगरचे मेरी हालत बहुत बेहतर थी, मेरा दर्द कम हो गया था, मेरी बीमारी का इलाज हो गया था, मुझे जो सर दर्द और आँख में दर्द हो रहा था सालों से उससे मुझे राहत और निजात मिल गई थी, लेकिन जब उन्होंने दोबारे पूछा चलना है तो फौरन मैंने जवाब दिया ना, क्योंकि मैं समझ गया था कि ये मरहला मौत का मरहला है और मेरे इंतकाल का वक्त आ गया है और वो मुझे इस जहान से लेकर दूसरे जहान में ले जाएंगे। लेकिन मैंने उनसे कहा ना, और मैं अपने चाचा के बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखे ये शहीद है, मैं अपनी ज़िंदगी में शहादत की आरज़ू रखता हूँ और बहुत मैंने कोशिश की, बहुत जंग में शिरकत की, बहुत जद्दोजहद भी की है, और आप चाहते कि मैं ऐसी हालत में, इस वजीयत में, इस मकाम पर, इस हॉस्पिटल में अपने आप को आपके हवाले कर दूँ? ना, मैं शहादत का तलबगार हूँ। लेकिन मेरे मना करने का और इसरार करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जैसे कि डिसीशन ले चुके थे, डिसीशन लिया गया है और मेरा यहाँ रहना कोई माना नहीं रखता, मैं कितना भी इसरार कर लूँ लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं था। तभी दो जवान मेरे पास आ गए, एक सीधे हाथ की तरफ और एक बाएं हाथ की तरफ, और उन दोनों ने कहा चले चलना है, और बेइख्तियार मैं इनके साथ हरकत करने लगा और इनके साथ चलने लगा, और कुछ ही लहज़ों में मैंने देखा कि मैं एक बहुत बड़े बयाबान में, एक बहुत बड़े मैदान में पहुंच गया। अच्छा, अब ये भी बताता चलूं कि जब ये हालत मुझ पर तारी हुई तो यहाँ ज़मान का कोई मतलब नहीं था, ज़मान और मकान यहाँ कोई माना नहीं रखता था, मैं एक ही लहजे में हज़ारों चीज़ें देख रहा था, हज़ारों चीज़ें समझ रहा था, हज़ारों मतालिब मेरे जहन में आ रहे थे और हर चीज़ से मैं कामिलन मुतवज्जे हो रहा था, और क्योंकि मैं उस बीमारी से और उस दर्द से और उस परेशानी से निजात पा गया था, मेरे चाचा का लड़का भी मेरे पास मौजूद था जो मेरे हमराह था, तो एक बहुत अच्छा एहसास, एक खुशहाली का एहसास हो रहा था। जब उनके चेहरे की तरफ निगाह करता हूँ, यानी मेरे चाचा के बेटे की तरफ, तो इतना ज़ीबा और नूरानी चेहरा था कि बस चेहरे की तरफ निगाह करते ही दिल में एक खुशी का एहसास हो रहा था। इतना ज़ीबा चेहरा था कि दिल चाह रहा था कि बस हमेशा इन्हीं के साथ रहूँ। फिर हम एक बड़े मैदान में हरकत करने लगे जहाँ पर ना कोई पानी, ना कोई घास, ना कोई दरख्त, बस बियाबान ही बियाबान और बहुत ही खुश्क जगह थी। जब आगे बढ़ने लगे तो बहुत दूर एक कोई चीज़ नज़र आई। जब आहिस्ते आहिस्ते हम नज़दीक पहुँचे तो देखे कि वहाँ एक मेज़ रखा हुआ है और मेज़ के पीछे एक शख्स बैठा हुआ है। और जब मेरे बाएं हाथ की तरफ मैंने निगाह की तो बहुत दूर मुझे कोई सैराब की तरह दिखने लगा। जब बहुत ध्यान से देखा, दिक्कत के साथ देखा, तो देखा कि वहाँ कुछ शोले जल रहे थे और वो शोलों की आग इतनी ज़्यादा थी कि उसकी गर्माहट मुझे उतनी दूर से भी यहाँ तक महसूस हो रही थी। और जब मेरे सीधे हाथ की तरफ देखा तो बहुत दूर एक बाग मानिंद या एक जंगल की तरह एक चीज़ नज़र आ रही थी। और वहाँ से एक बहुत ही अच्छी और खुनक ठंडी हवा चल रही थी। उस मेज़ के पीछे जो शख्स बैठा हुआ था, मैंने उसे सलाम किया और उसने भी बहुत अदब से मुझे जवाब दिया और कहा कि तुम्हारे ही इंतज़ार में बैठा हुआ था। देखते हैं क्या क्या कार तुमने क्या क्या काम तुमने अंजाम दिए हैं, क्या क्या आमाल तुमने अंजाम दिए। और उसने एक बहुत बड़ी किताब निकाली और मेज़ पर रखा और खोल दिया। और जब उन्होंने किताब खोली तो मेरे अतराफ़ कोई नहीं था, सिर्फ़ वो थे और ये दो जवान जिन्होंने मुझे उस दुनिया से यहाँ लेकर आए थे। बस ये हालत थी, और एक तरफ शोलों की गर्माहट और दूसरी तरफ से जंगल की ठंडी हवा। आगे देखते हैं क्या होता है, किताब में क्या आमाल नज़र आते हैं, क्या अच्छाइयाँ इन्होंने अंजाम दी हैं, क्या बुराइयाँ इन्होंने अंजाम दी हैं। आगे देखते हैं कि इन्होंने जितनी शब नमाज़ें पढ़ी हैं, जितनी नमाज़ें मस्जिद में पढ़ी हैं, इनका इन्हें क्या सवाब और अज्र मिलता है। और अगर कोई बुराई की है या कोई गलती की है तो इनके लिए, इन बुराइयों और गलतियों और इश्तेबाहात के लिए इन्हें क्या सज़ा भुगतनी पड़ती है। आगे की बहस मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में भेजता हूँ। तब तक के लिए इल्तिमा से दुआ, खुदा हाफिज़।